एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार और ज्ञान गोष्ठी में एक बार फिर से स्वागत है।
नमस्कार।
आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, डैनियल गोलमन की इमोशनल इंटेलिजेंस।
हाँ, भावनात्मक बुद्धिमत्ता।
और ये टॉपिक मुझे लगता है आज के जमाने में शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गया है। नहीं,
बिल्कुल।
जिस तरह की तेज रफ्तार जिंदगी है, इतना स्ट्रेस, कंपटीशन।
सही बात है।
तो अपनी भावनाओं को और दूसरों की भावनाओं को समझना, उन्हें ठीक से हैंडल करना, ये घर हो या ऑफिस, हर जगह जरूरी है।
हाँ, और ये किताब इसी बात पर जोर देती है कि सिर्फ किताबी कीड़ा होना या बहुत इंटेलिजेंट होना ही काफी नहीं है।
मतलब IQ ही सब कुछ नहीं है,
EQ यानी इमोशनल इंटेलिजेंस, वो भी बहुत मायने रखता है।
Exactly.
तो चलिए पहले लेखक के बारे में थोड़ी बात कर लें।
डैनियल गोलमन, इनका बैकग्राउंड क्या है?
हाँ बताइए।
तो डैनियल गोलमन एक जाने माने मनोवैज्ञानिक हैं और साइंस जर्नलिस्ट भी रहे हैं। हार्वर्ड से PhD हैं और करीब 12 साल तक इन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए ब्रेन और बिहेवियर साइंस पर लिखा।
अच्छा, मतलब साइंटिफिक बैकग्राउंड भी है और लिखने का अनुभव भी।
हाँ, और एक मजेदार बात यह है कि इमोशनल इंटेलिजेंस शब्द इन्होंने नहीं बनाया था, वो पीटर सैलोवे और जॉन मेयर ने दिया था।
ओ अच्छा, मुझे लगा था ये इन्हीं का टर्म है।
नहीं, लेकिन गोलमन ने इस कॉन्सेप्ट को दुनिया भर में पॉपुलर जरूर बनाया, उनकी वजह से ही ये इतना फेमस हुआ।
और उनकी खासियत क्या है, मतलब किस तरह से वो इस विषय को अप्रोच करते हैं?
उनकी सबसे बड़ी खूबी मेरे ख्याल से ये है कि वो मुश्किल साइंटिफिक रिसर्च, जैसे न्यूरोसाइंस या साइकोलॉजी की बातें,
हाँ जो आमतौर पर समझना मुश्किल होता है,
बिल्कुल, उसको वो बहुत आसान भाषा में दिलचस्प कहानियों और उदाहरणों के साथ समझाते हैं।
अच्छा,
तो वो एक तरह से एकेडमिक रिसर्च और आम लोगों की जिंदगी के बीच का गैप भरते हैं, प्रैक्टिकल बना देते हैं उसे।
सही कहा। उनका जर्नलिज्म का अनुभव यहाँ काम आता होगा कि कैसे कॉम्प्लेक्स चीजों को रिलेटेबल बनाया जाए।
हाँ बिल्कुल, ऐसा लगता है जैसे कोई समझदार दोस्त हमें कुछ जरूरी बातें बता रहा हो।
तो अब किताब पर आते हैं, इसका निचोड़ क्या है, क्या है वो मेन आइडिया जो गोलमन दे रहे हैं?
देखिए, किताब का जो सेंट्रल आइडिया है वो उस जमाने के हिसाब से काफी रेडिकल था। ये सीधे सीधे जो पारंपरिक सोच थी कि IQ ही सब कुछ है,
हाँ, कि बस दिमाग तेज होना चाहिए,
उसको चैलेंज करती है। गोलमन का मेन तर्क ये है कि इमोशनल इंटेलिजेंस यानी EQ, जिसमें अपनी भावनाओं को पहचानना, समझना, उन्हें काबू में रखना और साथ ही दूसरों की भावनाओं को समझना और उनसे सही ढंग से पेश आना, ये सारी क्षमताएं जीवन में सफलता, खुशी, अच्छे रिश्ते, इन सब के लिए IQ से कहीं ज्यादा जरूरी हैं।
शायद उतना सफल नहीं होता।
हाँ, जबकि कोई औसत IQ वाला इंसान बहुत आगे निकल जाता है।
सही। तो गोलमन कहते हैं कि भावनाएं कोई रुकावट नहीं है।
बिल्कुल नहीं, वो बल्कि जानकारी का स्रोत है, हमारी सोच का एक अहम हिस्सा है। अगर हम उन्हें सुनना सीखें तो वो हमें गाइड कर सकती हैं।
और सबसे अच्छी बात क्या है इस किताब की?
सबसे अच्छी बात और सबसे ज्यादा उम्मीद देने वाली बात यह है कि EQ कोई फिक्स्ड चीज नहीं है। ऐसा नहीं कि आप इसके साथ पैदा होते हैं और बस।
अच्छा, इसे बदला जा सकता है?
हाँ, ये असल में स्किल्स का एक सेट है जिसे सीखा जा सकता है, डेवलप किया जा सकता है, बेहतर बनाया जा सकता है।
वाह, ये तो बहुत पॉजिटिव मैसेज
है ना? तो किताब का मकसद हमें स्मार्ट होने की एक नई परिभाषा देना है और खुद को बेहतर बनाने का एक प्रैक्टिकल रास्ता दिखाना है। ये सबके लिए है, पेरेंट्स, टीचर्स, लीडर्स या कोई भी जो पर्सनल ग्रोथ में इंटरेस्टेड हो।
चलिए अब थोड़ा और अंदर चलते हैं किताब के। गोलमन ने इसे कैसे स्ट्रक्चर किया है, क्या मुख्य हिस्से हैं?
किताब का जो पहला हिस्सा है, द इमोशनल ब्रेन या भावनात्मक मस्तिष्क, इसमें गोलमन बताते हैं कि हमारे पास असल में दो मन हैं।
दो मन?
हाँ, एक सोचने वाला, तर्क करने वाला मन, जिसे रैशनल माइंड कहते हैं, और दूसरा महसूस करने वाला यानी इमोशनल माइंड। और यहीं पर वो एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट लाते हैं, एमिग्डाला हाईजैक।
एमिग्डाला हाईजैक, ये क्या होता है? सुनने में थोड़ा डरावना लग रहा है।
है तो नाटकीय है, पर होता असल जिंदगी में है। देखिए, एमिग्डाला हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो भावनाओं, खासकर डर और गुस्से जैसी तीव्र भावनाओं को प्रोसेस करता है। तो एमिग्डाला हाईजैक वो सिचुएशन है जब कोई बहुत तेज भावना हम पर हावी हो जाती है और हमारा ये इमोशनल सेंटर एमिग्डाला हमारे सोचने समझने वाले दिमाग के हिस्से को, जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, ओवरपावर कर देता है, उसे एक तरह से हाईजैक कर लेता है।
अच्छा, तो मतलब सोच समझ काम करना बंद कर देती है।
बिल्कुल, उस वक्त तर्क गया तेल लेने, हम बस भावना के बहाव में बह जाते हैं, बिना सोचे समझे कुछ कह देते हैं, कर देते हैं, जैसे सड़क पर किसी से झगड़ा हो जाना, गुस्से में चिल्ला देना।
हाँ हाँ, समझ गई, बाद में पछतावा होता है कि क्या कर दिया मैंने।
वही, ये एमिग्डाला हाईजैक का नतीजा होता है। तो पहला हिस्सा हमें ये समझाता है कि हमारी भावनाएं दिमाग में कैसे काम करती हैं।
ओके।
तो ये हुई बायोलॉजी। इसके बाद दूसरे भाग में क्या है? दूसरा भाग है भावनात्मक बुद्धिमत्ता की प्रकृति, और ये किताब का कह सकते हैं कोर है। यहाँ गोलमैन ईक्यू के 5 मेन कंपोनेंट्स या स्किल्स बताते हैं।
5 स्किल्स, कौन कौन सी? पहली है सेल्फ अवेयरनेस, यानी आत्म जागरूकता। ये अपनी भावनाओं को उसी वक्त पहचानना है जब वो उठ रही हैं, और ये समझना कि उनका हम पर क्या असर हो रहा है। मैं क्यों गुस्सा हूं, मैं क्यों बेचैन हूं, ये जानना।
ये तो सबसे जरूरी लगता है, पहला कदम।
बिल्कुल, ये ईक्यू की बुनियाद है। खुद को समझे बिना बाकी चीजें मुश्किल हैं। दूसरी स्किल है सेल्फ रेगुलेशन, यानी आत्मनियमन।
मतलब खुद को काबू में रखना।
हाँ, अपनी जो परेशान करने वाली भावनाएं हैं, आवेग हैं, उन्हें कंट्रोल करना। लेकिन इसका मतलब दबाना नहीं है।
अच्छा,
मतलब उन्हें मैनेज करना, ताकि हम सोच समझ कर रिएक्ट करें, ना कि बस भावना में बह जाएं। जैसे गुस्सा आए तो चिल्लाने के बजाय शांति से अपनी बात कहना।
ठीक है, तीसरा?
तीसरा है मोटिवेशन, यानी अभिप्रेरणा। यह अपने लक्ष्यों को पाने के लिए अपनी भावनाओं का इस्तेमाल करने की क्षमता है। मुश्किलों के बावजूद उम्मीद रखना, जोश बनाए रखना।
और वो जो कहते हैं डिलेड ग्रेटिफिकेशन, तुरंत मिलने वाले सुख को टालना।
हाँ बिल्कुल, इसी में आता है कि बड़े लक्ष्य के लिए छोटे मोटे लालच छोड़ देना। यहीं पर वो मशहूर मार्शमेलो टेस्ट भी फिट होता है।
हाँ, वो बच्चों वाला टेस्ट।
हाँ, जिन बच्चों ने मार्शमेलो खाने के लिए इंतजार किया, वो बाद में ज्यादा सफल हुए। उनमें ये सेल्फ रेगुलेशन और मोटिवेशन ज्यादा था।
दिलचस्प। चौथा कॉम्पोनेंट क्या है?
चौथा है एम्पथी, यानी समानुभूति। दूसरों के भावनाओं को, उनकी जरूरतों को, उनके नजरिए को समझना, ये महसूस करना कि सामने वाला क्या महसूस कर रहा है।
ये तो रिश्तों के लिए बहुत जरूरी है।
बिल्कुल, इसे बेसिक पीपल स्किल कह सकते हैं। और पांचवा है सोशल स्किल्स।
सोशल स्किल्स
यानी सामाजिक कौशल।
इसमें क्या आता है?
इसमें आता है रिश्ते बनाना और निभाना, दूसरों को इन्फ्लुएंस करना, अच्छे से कम्युनिकेट करना, टीम में काम करना, झगड़े सुलझाना, लोगों को इंस्पायर करना, ये सारी चीजें।
समझ गया, तो ये पांचों मिलकर ईक्यू बनाते हैं। सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, मोटिवेशन, एम्पथी और सोशल स्किल्स।
बिल्कुल, और फिर किताब के तीसरे भाग में गोलमैन बताते हैं कि ये स्किल्स असल जिंदगी में कैसे काम आती हैं।
हाँ, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। जैसे कहाँ?
जैसे करीबी रिश्तों में। गोलमैन जॉन गॉटमैन की रिसर्च का हवाला देते हैं, जो बताते हैं कि शादियों की कामयाबी इस पर निर्भर नहीं करती कि कपल्स कितना लड़ते हैं,
बल्कि कैसे लड़ते हैं।
हाँ, कि क्या वो झगड़ते वक्त एक दूसरे की सुनते हैं, अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर पाते हैं। यहाँ एम्पथी और सेल्फ रेगुलेशन बहुत काम आते हैं।
ये बात तो है। और काम की जगह पर, ऑफिस वगैरह में?
वहाँ भी। गोलमैन इसे मैनेजिंग विद हार्ट कहते हैं। उनका तर्क है कि आईक्यू या टेक्निकल स्किल आपको नौकरी दिला सकती है, लेकिन प्रमोशन पाने के लिए, एक अच्छा लीडर बनने के लिए, टीम को साथ लेकर चलने के लिए ईक्यू ज्यादा जरूरी है। जो स्टार परफॉर्मर्स होते हैं, उनमें अक्सर हाई ईक्यू होता है।
हाँ, क्योंकि उन्हें लोगों को समझना होता है, मोटिवेट करना होता है, सिर्फ अपना काम करने से नहीं होता।
एग्जैक्टली। और तीसरा एप्लीकेशन वो बताते हैं मन और सेहत के रिश्ते का।
अच्छा, हेल्थ पर भी असर पड़ता है?
बहुत गहरा। लंबे समय तक नेगेटिव इमोशंस में रहना, जैसे गुस्सा, चिंता, तनाव, ये हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर कर सकता है।
ओह।
और वहीं पॉजिटिव इमोशंस जैसे खुशी, उम्मीद, ये हमारी सेहत के लिए अच्छे हैं।
तो इमोशंस सिर्फ मानसिक नहीं, शारीरिक रूप से भी असर डालते हैं।
बिल्कुल। इसके बाद चौथा भाग है अवसर की खिड़कियां, विंडोज ऑफ अपॉर्चुनिटी।
इसमें क्या खास है?
इसमें गोलमैन बताते हैं कि बचपन और टीनेज, ये ईक्यू सीखने के लिए बहुत अहम समय है, क्योंकि तब दिमाग बदल रहा होता है, सीख रहा होता है तेजी से।
हाँ, प्लास्टिसिटी जिसे कहते हैं।
लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि ये सीखने की खिड़की कभी बंद नहीं होती।
मतलब बाद में भी सीख सकते हैं।
हाँ, हम अपनी पूरी जिंदगी ईक्यू को बेहतर बना सकते हैं। इट्स नेवर टू लेट।
ये सुनकर अच्छा लगा। और आखिरी हिस्सा?
पांचवा और आखिरी भाग है भावनात्मक साक्षरता, इमोशनल लिटरेसी। यहाँ गोलमैन थोड़ा बड़े पर्सपेक्टिव से देखते हैं,
समाज के नजरिए से।
हाँ, वो कहते हैं कि समाज में जो बहुत सी समस्याएं हैं, डिप्रेशन, वायलेंस, रिश्तों का टूटना उनका एक बड़ा कारण इमोशनल इलिटरेसी है, मतलब लोग अपनी और दूसरों की भावनाओं को ठीक से समझते नहीं, संभालते नहीं। इसलिए वो स्कूलों में SEL यानी सोशल एंड इमोशनल लर्निंग प्रोग्राम्स की वकालत करते हैं कि बच्चों को शुरू से ही सेल्फ अवेयरनेस, एम्पथी, प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसी स्किल्स सिखाई जाएं,
ताकि एक ज्यादा बेहतर, ज्यादा केयरिंग समाज बन सके।
बिल्कुल।
तो ये किताब तो वाकई बहुत सारे पहलुओं को छूती है। अगर हम इसके सबसे जरूरी संदेशों को समेटना चाहें तो क्या कहेंगे?
मेरे लिए सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी मैसेज है कि EQ का महत्व IQ से कम नहीं है, बल्कि ज्यादा है जब जिंदगी में असल कामयाबी और खुशी की बात आती है।
हाँ, सिर्फ दिमागी घोड़े दौड़ाना काफी नहीं है।
बिल्कुल। ऑफिस में प्रमोशन हो या घर में अच्छे रिश्ते हों, EQ बहुत मायने रखता है।
और दूसरी बात जो मुझे बहुत होप देती है वो ये कि EQ सीखा जा सकता है, ये पत्थर की लकीर नहीं है।
सही कहा, हम सब कोशिश करके इसे बेहतर बना सकते हैं। अगर लगता है गुस्सा जल्दी आता है या दूसरों की बात समझ नहीं आती तो इस पर काम किया जा सकता है, बदलाव मुमकिन है।
तीसरा पॉइंट क्या होगा?
तीसरा है एम्पथी का महत्व, दूसरों की भावनाओं को महसूस कर पाना, उनकी जगह खुद को रख पाना। यही चीज हमें क्रूरता से रोकती है, हमें दयालु बनाती है
और जोड़ती भी है एक दूसरे से।
हाँ, और हमारे जैसे देश में जहां इतनी विविधता है वहां तो एम्पथी और भी जरूरी है।
बिल्कुल। और चौथा?
चौथा जो बार बार आता है वो है सेल्फ अवेयरनेस की नींव। अगर हम खुद ही नहीं जानते कि हम क्या महसूस कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं,
तो ना खुद को संभाल पाएंगे ना दूसरों को समझ पाएंगे।
एग्जैक्टली। तो खुद पर ध्यान देना, अपनी भावनाओं को समझना, यहीं से शुरुआत होती है।
इस किताब में कुछ ऐसी लाइंस भी होंगी जो याद रह जाती हैं, कुछ कोट्स।
हाँ बिल्कुल हैं। जैसे एक तो यही बेसिक आइडिया, असल में हमारे पास दो मन हैं, एक जो सोचता है और एक जो महसूस करता है। ये याद दिलाता है कि बैलेंस जरूरी है।
हाँ, लॉजिक और इमोशन दोनों का बैलेंस।
दूसरा जो वर्कप्लेस के लिए बहुत सटीक है, IQ आपको नौकरी दिलाता है लेकिन EQ आपको प्रमोशन दिलाता है।
हाँ हाँ हाँ, ये तो एकदम पॉइंट पर है। करियर में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ टेक्निकल स्किल काफी नहीं।
बिल्कुल। तीसरा जो नींव वाली बात है, आत्म जागरूकता भावनात्मक बुद्धिमत्ता का आधार है। ये फिर से एम्फसाइज करता है कि शुरुआत खुद को जानने से ही होगी।
सही। और वो एमिग्डाला हाईजैक वाला?
हाँ, एमिग्डाला हाईजैक एक भावनात्मक कब्जा है। ये हमें उन पलों को समझने में मदद करता है जब हम आपा खो देते हैं, ताकि हम उन्हें पहचान सकें और कंट्रोल कर सकें।
ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा है, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें? कुछ प्रैक्टिकल टिप्स?
हाँ बिल्कुल। जैसे पर्सनल रिश्तों में जब किसी से बहस हो तो फौरन रिएक्ट करने के बजाय एक सेकंड रुकें, सोचें मुझे कैसा लग रहा है, अपनी भावना पहचानें, फिर कोशिश करें सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की। आप पूछ भी सकते हैं, तुम्हें कैसा लग रहा है? ये छोटा सा पॉज भी बहुत फर्क डाल सकता है।
और काम की जगह पर?
वहां अपनी टीम या कोवर्कर्स पर ध्यान दें, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें, टोन सुनें, क्या कोई स्ट्रेस में है, एम्पैथी। अगर कोई मुश्किल सिचुएशन आए, गहरी सांस लें, शांत रहने की कोशिश करें, सेल्फ रेगुलेशन।
और फीडबैक को पर्सनली ना लें।
बिल्कुल। उसे सीखने का मौका समझें।
और पेरेंटिंग में कैसे इस्तेमाल करें?
बच्चों को उनकी फीलिंग्स पहचानने में मदद करें, उन्हें नाम दें, कहें लगता है तुम गुस्सा हो क्योंकि, या तुम उदास लग रहे हो, और उन्हें सिखाएं कि बड़ी फीलिंग्स को कैसे हैंडल करें,
जैसे थोड़ी देर शांत बैठना या ड्राइंग करना।
हाँ, कुछ हेल्दी तरीके।
और खुद के लिए, अपनी भलाई के लिए,
म्यूजिक सुने, टहले,
और ये समझे कि भावनाएं हमारे फैसलों पर कैसे असर डालती
हैं। हाँ, ताकि हम ज्यादा सोच समझ कर फैसले ले सकें, खासकर जब इमोशनल हों।
तो अगर इस पूरे बातचीत का सार निकालना हो, हाँ, तो आपके लिए सबसे बड़ी सीख क्या है?
मेरे लिए सबसे बड़ी सीख यही है कि सक्सेस और हैप्पीनेस सिर्फ दिमाग का खेल नहीं है, दिल की समझ यानी EQ उतनी ही, शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। और सबसे अच्छी बात, इसे सीखा जा सकता है।
और मेरे लिए जो बात सबसे अहम लगी वो ये कि इमोशंस को नेगेटिव या कमजोरी मानने की जरूरत नहीं है। वो असल में जानकारी है, सिग्नल्स है, वो हमें गाइड कर सकते हैं अगर हम उन्हें सुनना सीखें। ये इंटेलिजेंस को एक ज्यादा कंप्लीट, ज्यादा ह्यूमन पर्सपेक्टिव देता है।
बिल्कुल। ये हमें याद दिलाता है कि एक पूरा इंसान होने का मतलब सिर्फ सोचना नहीं, महसूस करना भी है, और इन दोनों का संतुलन ही असली समझदारी है।
बिल्कुल सही। और इसी के साथ ये सवाल भी उठता है कि अगर EQ इतना जरूरी है और सीखा भी जा सकता है, तो क्या हम इसे अपनी एजुकेशन में, अपनी वर्कप्लेस कल्चर में, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में वो जगह दे रहे हैं जो इसे मिलनी चाहिए? इस पर सोचने के लिए छोड़ते हुए मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।